मुख्य समाचारों में विक्टोरिया में 627 नए कोविड 19 मामले। भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में नए मामले 55,000 से ऊपर। और स्विस अभियोजकों ने शुरू की फीफा अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और लीजिए प्रस्तुत है समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया में कोविड 19 के 627 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य 8 मौतों के मामले भी दर्ज हुए हैं। प्रीमियर एंड्रयूज ने राज्य में लगे प्रतिबंधों को सख्त या बढ़ाने की बात की है। आज प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और श्री एंड्रयूज के बीच चर्चा के बाद विक्टोरिया के कोरोना वायरस डेटा पर एक संयुक्त राष्ट्रमंडल राज्य विश्लेषण किया जा रहा है। प्रीमियर एंड्रयूज ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या बहुत अधिक है।
We could not open up with these numbers. We could not open up even with significantly less than these numbers. So it is, it may well be the case, and the data may well bear this out, and the best advice may well come to me that we need to take further steps. That the steps we've taken are not enough to pull this up.
न्यू साउथ वेल्स में आज कोरोना वायरस के 21 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले कल से मामूली वृद्धि है। इसमें से 2 मामले होटल क्वारंटीन के हैं, 2 वेदरल पार्क के थाई रॉक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं। इस क्लस्टर से जुड़े केसेस की संख्या अब 94 हो गई है। 6 मामले पॉट्स पॉइंट के अपोलो रेस्टोरेंट, 3 मामले अवर लेडी ऑफ लेबनान से जुड़े हुए हैं और 2 मामले माउंटीज क्लब और 2 अन्य मामले फ्यूनरल से जुड़े हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जेरेमी मैकॉन्टी ने एक बार फिर सेल्फ आइसोलेशन और दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
Anyone directed to undertake a 14-day self-isolation period must stay in isolation for that full period, even if they test negative. This is because early testing may not detect infection and release from self-isolation based on a negative test could allow an infectious person to infect other people in the community. The self-isolation period is 14 days, as most people who are infected develop symptoms within 14 days.
Queensland में COVID-19 के एक नए मामले की सूचना आई है। ये नया मामला उन महिलाओं से जुड़ा हुआ है जिन पर मेलबर्न से क्वींसलैंड की यात्रा करने का आरोप है और अब इन महिलाओं पर आपराधिक आरोप लगे हैं। 27 वर्षीय ये COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति वेलबर्ट पार्क से है और एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसने ब्रिस्बेन के दक्षिण में एक कोरियन रेस्टोरेंट में भोजन किया। प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेसी का कहना है कि इस रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले अन्य लोगों को सतर्क रहना चाहिए।
He is believed to have been a close contact of people who went to the Korean restaurant in Sunnybank on the 23rd of July. So it's very important that if anyone else was at that Korean restaurant, the Ma Tung San Korean restaurant in Sunnybank, if you have any concerns, if you are feeling the slightest bit unwell, you must go and get tested.
विक्टोरिया में COVID-19 से मरने वाले बुजुर्ग नर्सिंग होम निवासियों के 100 रिश्तेदारों ने एज्ड केयर मंत्री रिचर्ड कोलबेक के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त की। श्री कोलबेक ने चैनल 9 को बताया कि कुछ रिश्तेदारों ने जानकारी प्राप्त करने में देरी की बात कही है और उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि उनके प्रियजनों की मृत्यु हो चुकी थी।
Obviously upset, they were distressed, but some of them were angry. They were looking for answers about some of the events that had occurred in the facility in the lead up to the outbreak. They wanted to know what their options are now.
न्यू साउथ वेल्स सरकार ने छूट मिलने के बाद सिडनी की एक मस्जिद में 400 लोगों को इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से इस एक दिन को मनाने की अनुमति दी है। ऑबर्न गली पुली मास्क में ईद अल अधा की नमाज सेवा आयोजित होगी और इसे 4 अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि हर हिस्से में 100 से अधिक लोग ना हों। न्यू साउथ वेल्स में COVID-19 प्रतिबंधों के तहत पूजा स्थल पर वर्तमान में 100 लोग या एक व्यक्ति प्रति 4 वर्ग मीटर तक की सीमा लागू है। विक्टोरिया में जहां इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप है, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ब्रेट सुटन ने एक सोशल मीडिया वीडियो जारी किया है जहां उन्होंने मुसलमानों से इस साल घर पर रहने का अनुरोध किया है।
Eid al-Adha is normally a time for family and friends to come together, but this year it has to be different. This Eid al-Adha, please help stop the spread of coronavirus by staying home and celebrating with the people you live with.
लेबर का कहना है कि रूबी प्रिंसेस के मामले में मॉरिसन सरकार द्वारा फेडरल अधिकारियों को न्यू साउथ वेल्स स्पेशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने आने की अनुमति देनी चाहिए। ये बात सामने आई है कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स अधिकारी ने बीमार यात्रियों को फ्लू परीक्षण के परिणामों को गलत तरीके से समझने के बाद उन्हें क्रूज से उतरने की अनुमति दी। इस अधिकारी ने गलती से कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परिणाम को सोचा, जबकि वो केवल फ्लू के लिए ही नकारात्मक परीक्षण परिणाम थे। एक बयान में ऑस्ट्रेलियन सीमा बल का कहना है कि उन परिणामों को गलत समझने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यात्रियों को जहाज से उतरने की मंजूरी दी गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स मानव स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। एबीएफ प्रमुख ने पहले कहा था कि यात्रियों को जहाज से उतरने की अनुमति न्यू साउथ वेल्स हेल्थ और फेडरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। लेबर के होम अफेयर्स की प्रवक्ता क्रिस्टीना कैनली ने एबीसी को बताया है कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स को यात्रियों के जहाज को छोड़ देने के एक दिन बाद परीक्षण के परिणाम में गलती का पता चला था। सुश्री कैनली ने मॉरिसन सरकार पर आरोप लगाया कि वो उसे कवर करने की कोशिश कर रही है।
So what we know from these documents is that from the 20th of March, the day after the Ruby Princess arrived, Australian Border Force realized and understood this tragic mistake. But Peter Dutton and Scott Morrison have been covering it up ever since, seeking to blame New South Wales Health and refusing to cooperate with the Special Commission of Inquiry.
जहाज से यात्रियों के उतरने के बाद COVID-19 समुदाय में फैलता हुआ देखा गया। इस जहाज से 660 से अधिक संक्रमण और कम से कम 22 मौतें जुड़ी हुई हैं। सुपरमार्केट चेन वूलवर्थ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलियन राजधानी क्षेत्र और क्वींसलैंड के कुछ हिस्सों में ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्वींसलैंड COVID-19 हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को आज से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है और एसीटी और न्यू साउथ वेल्स के सभी स्टोर्स पर ये अनुरोध सोमवार 3 अगस्त से लागू होगा। नए दिशा निर्देश डैन मर्फी, BWS, ALH होटल्स और बिग डब्ल्यू पर भी लागू होते हैं। और भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। आज 31 जुलाई को पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के नए मरीजों का मामला 55,000 से ऊपर हो गया। भारत में कोरोना वायरस के मामले 16,38,870 हो चुके हैं और फिलहाल देश में संक्रमण के कुल सक्रिय मामले 5,45,318 हैं। देश का रिकवरी फिलहाल 64.54% पर चल रहा है और देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 35,747 हो चुकी है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के 53 रुपए 91 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में स्विट्जरलैंड में अभियोजकों ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ये स्विस अटॉर्नी जनरल माइकल लॉबर के साथ फीफा अध्यक्ष की एक कथित गुप्त बैठक के संदर्भ में है। पिछले हफ्ते लॉबर ने इस्तीफे की पेशकश की थी। एक अदालत ने पाया कि उन्होंने बैठक को कवर किया था और कार्यालय द्वारा फीफा से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच के दौरान उन्होंने पर्यवेक्षकों से झूठ बोला था। इन्फेंटिनो और लॉबर दोनों ने ही किसी भी गलत काम से इनकार किया है। श्री इन्फेंटिनो का कहना है कि वो जांच में सहयोग करेंगे और श्री लॉबर अगस्त के अंत में अपना पद छोड़ देंगे। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पर्थ में कल यानी शनिवार को मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में धूप रहेगी, मुख्यतः अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम -2 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।